अक्सर जो चीज़ें हम सीखते हैं या सिखाते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि अब मेरे सीखने से मेरी दोस्त को फ़ायदा होना चाहिए, और हम बाज़ दफ़ा फिर उनका जीना धोबर कर देते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपके अपने लिए होती हैं, और ये टॉपिक भी उसी में से है। क्यों? कि वो ईमान और वो तकवा और वो कुरान से मोहब्बत जो आपको यहाँ ले आई, वो आपको इस बात को समझने में ज़्यादा मददगार होगी, ना कि किसी घर में बैठे, हो सकता है वो किसी और ही मूड में बैठा हो, या मैं सिर्फ आपको दावा की टेक्निक समझाने के लिए बात कर रही हूँ। कोई फिल्म देख रहा है, मिसाल है, अब फिल्म में तो वो सब कुछ है जो इस बुक में नहीं है, मिसाल है, और आप एकदम जाके इधर आए, आज हमने एक बड़ी अच्छी चीज़ पढ़ी, ये हो गया, छोड़ो चुप करो। हमेशा याद रखिए कि बात अच्छी हो लेकिन गलत माहौल में कही जाए, गलत तरीके से कही जाए, तो उसका असर ख़त्म हो जाता है। जब भी आप देखें, इसकी एक छोटी सी मिसाल है कि डॉक्टर की दुकान पे आप जाते हैं, किसी भी डिस्पेंसरी में चले जाएं, दवाइयाँ सबको मिल जाती हैं, लेकिन हम इतने पैसे देकर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि डॉक्टर हमें ना सिर्फ ये बताता है कि कौन सी दवा खानी है, बल्कि ये भी बताता है कब और कितनी खानी है। तो इस तरह की बेकार किस्म की तबलीग जो लोगों को दीन से और आपसे मुतनफिर कर दे, उससे बचना चाहिए, क्योंकि अभी उससे पहले के बहुत से काम हैं। हो सकता है किसी ने नमाज़े असर मिस की हुई है और वो अपने किसी शौक की खातिर बाजार में धक्के खा रहा है, और आप जाके उसको इनमें से कोई एक चीज़ बताती हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो फ़ायदा उठाएगा उससे? वो और दूर हो जाएगा, वो आपको भी आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस तरीके से इस क्लास से बिल्कुल दूर कर देगा कि ये आई है तो अब इसने मुझे भी इस तरह की बातें कहनी है। तो हमेशा हिकमत के साथ बात करें, और ख़ास तौर पे लिबास और हिजाब या जो भी यहाँ ख़वातीन के पहनने ओढ़ने से मुतल्लिक चीज़ें हैं, औरतों को सबसे ज़्यादा बुरा यही टॉपिक लगता है। कब? जब वो खुद इस पे अमल नहीं करती। मर्दों को अमूमन तिजारत, हलाल हराम, ये जायज़ ये नाजायज़, ये करना वो नहीं करना, ये टॉपिक्स अच्छे नहीं लगते, चुपते हैं। हाँ, तुम्हें क्या पता हमारी कितनी मजबूरियाँ हैं, अब तुम हमें सिखाओगी, इस तरह की बातें। औरतों को अमूमन इस टॉपिक पे, क्योंकि ये औरत का एक किस्म का वीक पॉइंट होता है, और इंसान जब अल्लाह ताला से नहीं जुड़ा होता ना, तो वो फिर हर कीमत पर अपना वो मकसद हासिल करना चाहता है। इस चीज़ के साथ फिर एक इंसान जब दीन की किसी महफिल से सिर्फ सरे राह गुजरते हुए भी आता है, तो उसको सारा दिन ऐसे ही लगता है, मुझे किसी की बात याद आ गई, किसी ने उनको क्लास की दावत दी, यानी सिर्फ सिंपल कुरान क्लास के लिए उन्होंने जाकर उनको दावत दी, तो उनके साथ जो भी बैठे थे उन्होंने कहा रहने दो, मैंने इसको नकाबी नहीं बनाना। हालांकि ना वो पर्दे की दावत थी, ना वो कोई लिबास के बयान की दावत थी, वो जस्ट कुरान की क्लास की और शायद दौरा ही कुरान की दावत थी, लेकिन उससे क्या पता चला कि खौफ इतना है दिलों में कि जो कुरान पढ़ने आती हैं वो सबसे पहले अपने ज़ाहरी गेटअप को चेंज कर लेती हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि हमें सीखने समझने और इस पे फिर अमल करने वाला बनाए, और अगर अपने अमल में कमी है फिर तो घूरें खुद को, लेकिन किसी के अमल में कमी है तो उसको इग्नोर करें, यही खूबसूरत दावत होती है, इग्नोर ग्रेसफुली। आप देखेंगे ये इतना फितरी काम है, ये इतनी फितरी चीज़ है कि जिसके बाद आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान का अपना दिल इस बात की गवाही देता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं बुक को, इंशाल्लाह ताला कुछ। जी सरेआम खुली जगह पे जहाँ औरत चले और उसके पाँव की टिक टिक की आवाज़ आए, हील वाले जूते नहीं पहनने चाहिए। पहली बात है आप आइंदा से लेने छोड़ दें। दूसरी बात मैं आपको प्रैक्टिकल तरीका बता देती हूँ कि अगर आपके पास है हील वाला जूता है और आपको शादी में पहनना है, या आपका कोई ड्रेस ऐसा है, लेंथ लंबी है कुछ है, घर से बिल्कुल सीधे साधे जूते में जाएं, और वह जब वहाँ उस हॉल में जहाँ सिस्टर्स में हैं आप पहनना चाहें पहन लीजिए, वापसी पे फिर उतार के आ जाएं। मेरे पास एक जूता है हील वाला, शायद मेरा ख्याल है, मुझे याद भी नहीं मैंने कब लिया था, कब कह 10-12 साल हो गए होंगे। अब टूटा था तो मैंने इस दफा किसी से उसको एल्फी भी लगवा ली। वो मैं सिर्फ तब पहनती हूँ जब मेरे एक आधा ड्रेस कोई ऐसा या अबाया ऐसा है कि जो लंबा है, और मैं कभी घर से नहीं पहन के जाती। आम जूता जो बाहर का है वही है, आम हिजाब जो स्कार्फ जो बाहर जब सब जगह पहनते हैं, शादियों में भी वही पहनना है। जब शादी हॉल में जाके आप अपने आप को रिलैक्स करते हैं, अबाया उतारते हैं, जूता भी बदल लीजिए, बाद में फिर आ जाएं। लेकिन टुक टुक करके मर्दों में से हील वाले जूते पहन के जाना ये पसंदीदा अमल भी नहीं है। दूसरी बात आप देखिए कि इससे जिस्म कितना थकता है, आप देखिए कि आज कमर की तकलीफें, सर की तकलीफें, और आप खुद अपने ऊपर लेकर सोचें कि माशाल्लाह इंसान का वजूद भी भारी हो और एक बिल्कुल पतली सी में भी उसकी विड्थ देखें चौड़ाई, तो मेरा ख्याल है उसका रेडियस जो है वो एक इंच भी नहीं होता, उससे भी ज़्यादा होता है। तो उसके ऊपर जब आपका वजूद अपने आप को सहारेगा, हो सकता है थोड़ी देर शौक पूरा करने के लिए 10-15 मिनट में आपने कभी वंस अ वाइल पहन लिया, इट्स ओके, लेकिन अगर आप 3-4 घंटे शादी का फंक्शन और इधर से उधर उधर से इधर, नहीं। या फिर एक और भी काम कर लें, उसको साथ पकड़ लें, पहन सॉफ्ट जूता ले और हील वाली साथ दिखाते रहें कि ये मेरे पास मैचिंग जूती है। ये तो खैर मैं आपको मुश्किल हालात कह रही हूँ, लेकिन आइंदा से अवॉइड करें। अगर आपका दिल करता है कि आपको कोई लेना है तो वो ना लें जिसके पीछे नोक है। बहुत सारी जूते फ्लैट होते हैं, आगे से पाँव ऐसे हो जाता है, तो किस्सा मुख्तसर ये बातें बहुत गैर अहम हो जाती हैं जब बंदे को असल बात समझ आती है। हमारे सहाबा कराम और सहाबियात इस बात में सबसे आगे थे कि जब किसी बात से अल्लाह के नबी ने मना कर दिया तो वो फिर उस पर जमे नहीं। एक सहाबी थे, उनके पास सोने की अंगूठी थी, पहनी भी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखा मैं हदीस सुनाती हूँ सही मुस्लिम की है, एक आदमी सोने की अंगूठी पहनकर हाजिर हुआ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से से इसके हाथ से अंगूठी उतार कर फेंक दी और फरमाया, तुम अपने हाथ में आग का अंगारा लेना चाहते हो? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो सहाबा कराम ने मशवरा दिया, अंगूठी उठा लो और इसे बेच कर या बीवी या बेटी को दे दो या इस्तेमाल में ले आओ, यानी कुछ कर लो, तुम नहीं पहन सकते लेकिन वो उसको बेचना हराम तो नहीं। सहाबी फरमाने लगे, अल्लाह की कसम जिस अंगूठी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्से की निगाह पड़ी है मैं इसे कभी इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये मुस्लिम की रिवायत है। अब आप देखिए ये इत्तबा है ना, यानी सहाबा कराम और इत्तबाए सुन्नत की ये बेहतरीन मिसाल है। हर मामले में सुनकर मानने वाले होते थे। इसी तरह हज़रत कुरा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत करते वक्त आपकी कमीज़ का गिरेबान खुला देखा, यानी जैसे अक्सर मर्द एक या दो बटन खुला छोड़ देते हैं, इसके बाद सारी ज़िंदगी अपनी कमीज़ का गिरेबान खुला ही रखा। उनके बेटे हज़रत मुआविया ने अपने वालिद की ज़ुबान से रसूलुल्लाह की कमीज़ के खुले गिरेबान का जिक्र सुना तो उन्होंने भी उम्र भर अपनी कमीज़ का गिरेबान खुला ही रखा। यह अबू दाऊद की रिवायत है। आज आप कहेंगे क्या क्रेजी पीपल, हाउ क्रेजी दे आर, बट ऐसे ही क्रेजी होते हैं जो कुछ करते हैं। याद रखिए, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को सुनने के बाद अकल के घोड़े दौड़ाना, प्रोज एंड कॉन, होगा क्या, फ़ायदा क्या, नुकसान क्या, ऐसे लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ते। जन्नत में जाना बहुत आसान है, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। आगे वाले तो फिर आगे ही वाले हैं, अस्हाबुल यमीन तो हैं, लेकिन अस्साबिकून अलअव्वलून, कुरान क्या कहते हैं सूरत वाकिया में, वो तो फिर आगे ही वाले हैं। तुम्हें क्या पता वो क्या, वो तो आगे ही वाले हैं। तो ये मेरे आपके डिसाइड करने की चीज़ें होती हैं। और यहाँ आपको ये भी बता दूँ कि जब हम दीन की कोई बात सुनते हैं और दिल में ये ख्याल ले आते हैं ना कि हम नहीं कर सकते, आजकल नहीं हो सकता, अब मेरा मियाँ हैंडसम सूटेड बूटेड वो कैसे एक वो गेटअप इख्तियार करे जो अल्लाह और उसके रसूल का, तो इससे फिर तौफीक छिन जाती है। क्या सोचना चाहिए, हो सकता है, होगा, आज मैं नहीं कर रहा कल करूँगा, जब आज नहीं करा कल करूँगा, इस नीयत पे आप देखिएगा रास्ते बनते जाएंगे और आसानियाँ होंगी। आप देखिए कि ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये अगर आपकी टिप्स पर आ गई ना तो आप दूसरों को भी बताएंगे, आप फील करेंगे कि ये बातें ज़ुबानी कैसे याद हो जाती हैं। एक दफ़ा सुनते वक्त हिंट लिख लिया करें। और अगर आप इस बुक को खोल लें तो मैं आपके सभी के साथ ये चैप्टर शेयर कर लेती हूँ, पेज 48 से मैं कुछ हदीसें आपके सामने रख रही हूँ। तीसरा एक अमल है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे कराम रदियल्लाहु अन्हुम का जूतों समेत नमाज अदा फरमा रहे थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान नमाज जूते उतारे तो सारे सहाबे कराम ने भी नमाज के दौरान जूते उतार दिए। ये अबू दाऊद की रिवायत है। सोचें कहना पड़ा, और वो तो आप सबने वाक्या पढ़ा हुआ है किबले की तब्दीली का, पढ़ा हुआ है ना, जो सहाबा नमाज के दौरान किबला बदल सकते थे उनके लिए ये क्या बड़ी बात थी कि आपके जूते उतरते देखकर उतार दिए। और आपको पता है कि बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा कि तुमने क्यों जूते उतारे, मेरे पास तो जिब्राइल आए थे और उन्होंने मुझे खबर दी कि आपके जूतों में कोई ऐसी नापाक चीज़ लग गई है बाहर से राह चलते, तो मैंने तो इसलिए उतारे, कल आपको उतारते देखकर हमने भी उतार दिए। ये है इत्तबा। इत्तबा में अकल नहीं होती, फुट स्टेप पे कदम रखना होता है। आज ये दुआ करें अपने लिए, हम सारे आज के पूरे दिन का गोल ये बनाते हैं, इत्तबा की आदत हो जाए। कोई कहे ना कहे, कोई हुक्म दे, कोई फ़र्ज कहे, कोई सुन्नत कहे, कोई वाजिब कहे, कोई नफिल कहे, कोई अलाउड कहे, कोई आज के दौर में, कोई इस मुल्क में, कोई उस मुल्क में, कोई एक नाम से, कोई कुछ भी कह दे, बस मैं इस बात पे आ गई हूँ कि मैंने बग़ैर अकल इस्तेमाल किए मैंने इस काम को करना है। बात वाज़े, मुश्किलों के साथ देखिए, जब भी किसी से मोहब्बत होती है, और आप सभी किसी ना किसी से मोहब्बत करते हैं, हम सब मोहब्बतों की ज़मीन पर ही तो पलते पुलते हैं, कभी बहुत कहना पड़ता है जिसको आपसे मोहब्बत हो। हम तो इशारे के गुलाम हैं, एक दफ़ा कह दें कट 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 करके तैयार हैं आगे आने को। और जहाँ मोहब्बत नहीं होती, लोग हुक्म भी दे दें, वो कहते हैं हु केयर्स, हमारी भला से, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें ज़रूरत ही कोई नहीं आपकी, हम माँ बाप से बड़े बन गए, औलादे नहीं बात मानती जब खुद सर हो जाती हैं। तो बिल्कुल ये तौफीक आज पूरे दिन में मांगते रहेंगे हम कि अल्लाह बस जो सुनो ना, मानने वाली बन जाओ, मेरा दिल बदल दे, अल्लाह मेरे दिल की दुनिया को बदल दे। आप देखिए चौथा वाक्य, हज़रत फ़ुज़ाला रज़ी अल्लाह अन्हो मिस्र के हाकिम थे। बाज़ औक़ात परागंदा बाल ही उमूर सल्तनत अंजाम देने लगते, सहाबा किराम के इस्तफ़सार पर फरमाते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर वक्त बनठन कर रहने से मना फरमाया है। अबू दाऊद की रिवायत। इस पर भी अब एक अहम बात आप सीखने वाले हैं। देखिए अभी चूंकि लिबास का बयान है, इसमें बहुत कुछ है। इस्लाम आपको मुझे पहनने ओढ़ने और बनने ठहरने से नहीं रोकता, लेकिन अगर कोई चीज़ हमारे किरदार या हमारी शख्सियत का हिस्सा ही बन जाए, और फिर किसी वक्त किसी मजबूरी किसी दुख सुख में आप वो काम ना कर सकें, और लोग कहें आपकी तो शक्ल ही बदल गई, आपका तो चेहरा ही उतरा हुआ है, वो अच्छा मेकअप नहीं किया हुआ, इसकी इजाज़त नहीं है। यानी ये जुमला लिख लें, मेकअप की इजाज़त है, पर हर वक्त मेकअप में रहें, और कोई ख़ास मेकअप, मसलन आप आईलाइनर यूज़ करते हैं, अब इतनी आदत डल गई आपको कि दूसरों को भी डल गई आपको देखने की, अब किसी वक्त आपने नहीं लगाया हुआ तो लोग कहेंगे इनकी आंखें ख़राब हैं, आंखें सूजी भी लग रही हैं, उतरी भी लग रही, इसकी इजाज़त नहीं है। ये बात है सदी में, अच्छे कपड़े भी पहने, कभी आम भी पहन लें, कभी शादियों में भी सादे सादे चले जाएं पहन के, कभी घर में आम पहनते हैं तो कभी बहुत अच्छा पहन लीजिए। इस तरह की कैफियत होनी चाहिए कि कोई चीज़ आपका तारुफ ना बन जाए, बस ये एक सिंपल सी बात है। कुछ लोगों के बारे में आप कहते हैं वो हमेशा फलाह रूप में होते हैं, ये तारुफ अच्छा नहीं होता। तो इन्होंने अल्लाह के नबी की उस बात को अपने ऊपर लिया कि काम करने मिस्र के हाकिम हैं, क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन कभी किया कभी नहीं किया। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की हुरमत से कबल सोने की अंगूठी बनवाई, सहाबे कराम ने भी सोने की अंगूठियाँ बनवा कर पहन ली। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सोने की अंगूठी उतार फेंकी तो सहाबे कराम ने भी अपनी अंगूठियाँ उतार कर फेंक दी। बुखारी की रिवायत है। ये है तबा, बहुत सवाल नहीं करने पड़ते, जब मोहब्बत हो जाती है चीज़ से, अल्लाह के किसी हुक्म से, तो फिर बंदा उस पर बहुत सवाल नहीं पूछता। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु दाएँ हाथ में अंगूठी पहनते और फरमाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएँ हाथ में ही अंगूठी पहनते थे। ये निसाई की रिवायत है। तो क्या बाएँ हाथ में अंगूठी पहनना गुना, और क्या दाएँ हाथ में अंगूठी पहनना सवाब है, फ़र्ज है? नहीं है, सुन्नत, लेकिन कोई ना करे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहते थे पहननी इसलिए कि आप इस हाथ में पहनते थे। हज़रत शुएब रज़ी अल्लाह अन्हो के वालिद ने ज़ाफ़रानी रंग की चादर ओढ़ रखी थी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस इतना ही फरमाया, तुमने ये कैसी चादर ओढ़ रखी है? और आप सबको शायद अंदाज़ा हो कि मर्द के लिए ज़ाफ़रान में भीगा हुआ कपड़ा पहनना उसकी इजाज़त नहीं है। इन्हें महसूस हो गया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह रंग नापसंद फरमाया है। घर गए, तन्नूर जल रहा था, फौरन अपनी चादर इसमें फेंक दी और जला डाली। अबू दाऊद की ये रिवायत है। आप सोचिए ज़रा, किसी ने कहा था किसको फेंक दो? अल्लाह के नबी ने कहा था ना पहनो, हराम है, मकरूह है, सिर्फ ये पूछा ये कैसी पहनी है। यानी एहसास तो हो ही गया ना कि नागवारी का इजहार है, और उसको ही जला दिया। कोई सवाल जवाब नहीं, और उसके कई और इस्तेमाल थे, औरतों के लिए तो ख़राब नहीं थी ना, उसका गद्दा तो बना सकते थे ना, लेकिन मोहब्बत के सौदे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी का अज़ार पकड़कर फरमाया, इसे टखनों से ऊंचा कर, सहाबी ने इसी वक्त अपना आज़ार निस पिंडली तक ऊंचा कर लिया। रावी कहते हैं इसके बाद हमने इसका आज़ार निस पिंडली तक ही देखा हत्ता कि वह अपने रब से जा मिले। अहमद की रिवायत है। आज के किसी दीनदार को देखकर अगर कोई ऊंचा कर भी लेता ना तो ज़रा सा पीछे होने की देर है दोबारा उसी हालत में। मस्जिद में जाते हुए ज़रा सी पैंट शर्ट ट्राउज़र ऊंचा किया, बाद में फिर वैसे आ गए। कभी इंसान बैठ के सोचे ये लोग हैं क्या जिनसे मैं डरता हूँ? वही लोग शॉर्ट्स पहन के बाहर सड़कों पे निकल आए तो फैशन है, और उसी में अगर टखनों से ऊंची या घुटनों तक की शलवार या घुटनों से भी ज़रा सी नीचे की पहनने को कहा जाए तो कहते हैं ये मौलवी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ शॉर्ट पहनते हैं, यहाँ ट्राउज़र या पैंट या शलवार को फोल्ड करना पड़ता है, वो उसकी ग्रेस उसकी लुक ख़राब होती दिखती है। तो जो पैंट को फोल्ड नहीं कर पाते वो शॉर्ट में या लंबे से पजामे में या जिस तरह भी है उसमें अपने आप को बाहर निकलना कैसा कहेंगे? वो कहेंगे बड़े मॉड लग रहे हैं, केयरलेस। और क्या है केयरलेस, स्मार्ट और फुला। ये सिर्फ यहाँ है, सिर्फ यहाँ है, ये माइंड सेट है। इसको वही बदलेगा जिसको अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होगी। हज़रत ज़ैद बिन खालिद जोहनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से मिसवाक के बारे में ये इरशाद सुना कि अगर मैं अपनी उम्मत के लिए मशक्क़त ना समझता तो हर नमाज से पहले मिसवाक का हुक्म देता। ये फरमान सुनने के बाद हज़रत ज़ैद बिन खालिद जब भी नमाज के लिए खड़े होते तो पहले मिसवाक फरमा लेते। अबू दाऊद की रिवायत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुमरा के लंबे बाल और लंबा आज़ार देखा तो फरमाया सुमरा अच्छा आदमी है, अगर अपने बाल और औज़ार छोटा कर ले। हज़रत सुमरा को फौरन मालूम हुआ तो फौरन अपने बाल और औज़ार छोटे कर लिए। तो ये है वो जज्बा जिस पर रश किया जा सकता। सहाबे कराम को अल्लाह ने ये खूबी दी थी कि अल्लाह के रसूल की इताअत ही नहीं बल्कि इत्तबा भी करते थे, और सिर्फ मर्द ही नहीं औरतें भी। अबू दाऊद की रिवायत है कि कल आपको सुनाई थी मैंने सेशन के दौरान कि जब पर्दा करने का हुक्म नाजिल हुआ तो घर के कपड़ों से ओढ़नियाँ बनाई और जिस्म पे अपने हिजाब के तौर पे या अपने आप को ढांपने के तौर पे इस्तेमाल कर ली। इसीलिए अब देखिए कि सहाबा कराम को कुरान ने क्या टाइटल दिया है। सूरत अनफाल 74, उलाइका हुमुल मोमिनूना हक्का। यही लोग सच्चे मोमिन हैं। ज़रा सा इस पे रुकिए, किसी दूसरे को ना सोचें, अपने ऊपर सोचें। हमारे बारे में अगर रियायत हो तो क्या होती? उलाइका हुमुल मोमिनूना, हक का अपोजिट क्या है? बातिल। ये बातिल मोमिन है। ये मुंह से कलमा पढ़ते हैं, ये ज़ुबान से कहते हैं लेकिन ये कर नहीं पाते। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमा दे। फिर इसी तरह से सूरत बकरा 157, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। यही वो लोग हैं जिन पर इनके रब की मगफरत और रहमत है, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। कितने बड़े दर्जे इनके, अल्लाह की तरफ से सलावात, रहमतें, हिदायत का सर्टिफिकेट। और सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से सहाबे कराम को हम रदी अल्लाह अन्हुम कहते हैं वो क्या है, कोई बता सकता? रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन, सूरह तौबा आयत 100। अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी हो गए। तो सहाबा की नमाजें नहीं हैं कुरान में, चिल्ले नहीं हैं, उनके कोई एक पाँव पे खड़े होकर सारी रात गुजारने का जिक्र नहीं है, कोई उनकी बहुत ज़्यादा चमकती दमकती सजी संवरी नेकियां नहीं दिखती। उनकी नेकियां तो वो हैं कि वो जहां हुक्म आया चलने का चल पड़े, रुकने का रुक पड़े, रुलने का हुक्म आया रुल पड़े, खाने से रोके गए तो रुक गए, और वो इफ्स एंड बट्स में नहीं पड़े, और ये नहीं कहा बल्कि बस जो सुना समय ना वताना। तो आज मेरा आपका भी यही मुकाम हो सकता है। शर्त एक है कि हम भी इस सोच के साथ बात को सुने कि हमने अमल करना है, और अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आज लोग क्या कहते हैं अमूमन, जब भी कोई हुक्म आता है अल्लाह का तो क्या कहते हैं? जी पर्दा तो दिल का है, झूठ बोलने से तो बेहतर है दाढ़ी ना रखो, और जी दाढ़ी बस थोड़ी सी रख ली फिर इसको लंबी करने की क्या ज़रूरत है, और तस्वीर क्या है जी, वो तो वो थी जो हाथ से बनाई जाती थी, ये तो वो है, और जी मिसवाक से क्या होता है, हर वक्त आप एक में रस डंडी डालते रहे, बस ठीक है ना, ब्रश कर लिया ये भी काफ़ी। यानी आज लोग अमूमन शरीयत के मुकाबले में एक और शरीयत बनाते हैं और दीन के अहकामात को उसके ऊपर लगा रखते हैं। ये वो चीज़ होती है कि जो दीन को फिर दूसरे जो अमल करे उनकी नज़रों में भी मशकूक बना देती है, और जो लोग कर रहे होते हैं अमल लोगों को एक्सट्रीमिस्ट लगते हैं। मैं अक्सर रुझानात को देखते हुए सोचती हूँ कि अब तो वो भी वक्त आ गया है कि किसी मर्द का 5 वक्त मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना कुछ लोगों को एक्सट्रीमिज्म लगता है, कि अब ये क्या, अब इनको हम 5 बार मस्जिद लेकर जाएं, ये क्या है, ये गर्मी सर्दी नहीं देखते और दरवाज़ा खोल के निकल जाते हैं। ये आज 2000 सेंचुरी का ये तोहफा है कि हमें दूसरी चीज़ों पे एक्सट्रीमिज्म का तो कोई फतवा देता ही होगा, वो तो उनका शौक है, हमारे अपने लोग मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने को एक्सट्रीमिज्म कहते हैं। फजर पे बच्चा उठ के जाएगा, हाय फिर 7 बजे कैसे जाएगा, फिर नींद नहीं पूरी होगी, और हाय बड़े खतरे हैं उन मुल्कों में, और फलां जगह जाकर फजर की नमाज मस्जिद में जाना है, मस्जिदों में तो बमों के धमाके होते हैं। यानी ये जब माओं की कैफियत हो जाए कि स्कूलों में कॉलेजों में भेजते हुए बच्चों को ना डरें, मस्जिदों में सुबह के बाद भेज कर डरे, तो आप देखिए इससे फिर ज़्यादा और क्या चीज़ है। ज़रूरत इस बात की कि हम अपने आप को संभालें और सब बैठे मिलके पढ़ लो, ये क्या हुआ जी, अब जमात जाके मस्जिद में ही करनी है, इमाम साहब भी अगर यही सोच सोच ले तो फिर उस दिन तो मस्जिद में नमाज ना हो। यदि मैं आपको जमात की नमाज की इस वक्त बात नहीं कर रही, लेकिन अपने माइंड सेट की बात कर रही हूँ। अल्लाह ताला हमारी इसलाह फरमाए। चलिए इतना काफ़ी, अब हम आगे बुक को कंटिन्यू करेंगे तरतीब के साथ जो कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।